SBS हिंदी।
डॉक्टर मिश्रा, बताइए कि खबरें हैं कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा भारत से अगर आपको विदेश भेजना है तो उसके लिए पैन नंबर की आवश्यकता होगी, तो पहले तो हमें बताइए कि ये क्या खबर है और इसके थोड़ी जानकारी दीजिए हमें।
हाँ पल्लवी, देखिए ये खबर जो है इसका लेना देना है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से, जिसे शॉर्ट में LRS कहा जाता है। ये स्कीम रिजर्व बैंक ने 2004 में शुरू की थी, जिसके तहत भारत में रहने वाले लोग विदेशों में पैसा भेज सकते थे यात्रा के लिए, या विदेशों में रहे किसी रिश्तेदार का खर्चा चलाने के लिए, या इलाज कराने के लिए, या फिर विदेशों में प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसकी शुरुआत करीब 25,000 से की गई थी 2004 में, लेकिन धीरे धीरे इसकी लिमिट बढ़ा करके 2015 में 2.5 लाख अमरीकी डॉलर के बराबर कर दी गई थी। तो उसमें ये प्रावधान था अब तक कि आप अगर $25,000 या उससे कम की रकम बाहर भेज रहे हैं तो आपको पैन कार्ड नंबर उपलब्ध कराना जरूरी नहीं था, लेकिन अभी जो है रिजर्व बैंक ने ये नियम बनाया है कि आपको इस स्कीम के तहत पैसा भेजने पर आप कितना भी अमाउंट भेजें आपको पैन कार्ड नंबर उपलब्ध कराना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल डीलर को, जो बैंक हो सकता है।
जी, और ये क्यों कदम उठाया है सरकार ने, या जो जो अटकलें लगाई जा रही हैं या खबरों के अनुसार सरकार ने ये क्यों कदम उठाया है?
ये पल्लवी देखिए, ये जो है इसकी अगर शुरुआत देखी जाए तो इसके बारे में काफी कुछ पता चला जब पनामा पेपर्स वाला लीक हुआ था। उसके बाद से ही बार बार ये खबर उठ रही थी और RBI को ये पता भी चला कि इस स्कीम का मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी इसका दो तरीके से मिसयूज कर रहे थे। नंबर एक कि जो है इसने जो $2.5 लाख की जो लिमिट है उससे ज्यादा पैसा भेजा जा रहा था अलग अलग ट्रांजेक्शन के थ्रू, और दूसरा जो सरकार को ये पता चला कि कई बार अनअकाउंटेड मनी यानी कि ब्लैक मनी जिस पर भारत में टैक्स नहीं दिया गया है वो शायद इस स्कीम के थ्रू विदेश भेजा जा रहा है। तो ये दो तरह के मिसयूज को रोकने के लिए इस सरकार ने और भी कड़े कदम उठाए, कहा कि अब 25,000 की लिमिट जो है जिस पर पैन जरूरी नहीं था अब उस पर भी पैन जरूरी होगा।
डॉक्टर मिश्रा, बताइए कि सर्कुलर में शायद रिश्तेदारों को लेकर भी उसकी परिभाषा में शायद परिवर्तन किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं।
हाँ पल्लवी, इसमें जो है अभी इस सर्कुलर के बाद ये बताया गया है कि रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव जो है दे आर डिफाइंड एज पर द कंपनी एक्ट 2013। इसके पहले रिश्तेदार की डेफिनेशन थी कंपनी एक्ट 1956 वाली। तो 1956 का कंपनी एक्ट काफी बड़ा था और उसमें रिश्तेदार बहुत ही ब्रॉडली डिफाइंड टर्म था, बहुत सारी कैटेगरीज रिश्तेदार में आती थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 आपके रिश्तेदार सिर्फ पति पत्नी पिताजी माता बेटा बेटी बहू दामाद, इतने ही लोग आपके रिश्तेदार में आते हैं। तो जैसे पुरानी डेफिनेशन में जैसे और भाई बहन आपके रिश्तेदार में आते हैं, जैसे पुरानी डेफिनेशन में था बहन का पति भी आपका रिश्तेदार है, अब आप उसको रिश्तेदार में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, दादा दादी आपके रिश्तेदार में कैटेगराइज नहीं होंगे। तो ये एक चेंज है, जैसे पहले आपकी करीब 20 कैटेगरीज थी जो लोग आपके रिश्तेदार में क्लासीफाई होते थे, जिसको अभी अब 7 या 8 लोग ही आपके रिश्तेदार में कैटेगराइज होते हैं। तो ये भी एक चेंज है कि आप किसको पैसा भेज सकते हैं अपने रिश्तेदार की हैसियत से।
जी, अच्छा ये बताइए डॉक्टर मिश्रा कि इसका जो आम लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या हो सकता है कि वो किसी तरह का निवेश करना चाहे या प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, तो आम लोगों पर कितना असर पड़ सकता है इस निर्णय का?
नहीं, इस पे देखिए, ये पहली बात तो ये निर्णय का जो असली उद्देश्य है वो है कि जो लिमिट ब्रीच कर रहे हैं या ब्लैक मनी भेज रहे हैं उन पर ही लगाम लगाने का मुख्य उद्देश्य है। इस पर आम लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि ज्यादातर लोग जो अपनी खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई फंड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास पैन कार्ड है और उनका सारा पैसा अकाउंटेड फॉर है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रकम नहीं भेजते हैं, जो बच्चों की फीस और रहने के लिए खर्चा भेजते हैं वो ज्यादातर छोटी रकम होती है और उनके पास पैन कार्ड पहले से रहता है। जब इसमें एक समस्या यही है कि थोड़ा कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा लोगों के लिए, लोगों को थोड़ा और पेपर वर्क करना पड़ेगा और पैन नंबर देना पड़ेगा। एक मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इसका प्रभाव कुछ उन लोगों को पड़ सकता है जिन्होंने शायद जब वो छात्र थे तब वो ऑस्ट्रेलिया में आए थे और उन्होंने कभी शायद हिंदुस्तान में पैन कार्ड नहीं बनवाया है और शायद उनको पैन कार्ड मुहैया कराना पड़ेगा अब, तो उसके लिए शायद उन्हें पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से उनको थोड़ा कंप्लायंस का इश्यू होगा।
जी अच्छा, ये बताइए कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर क्या आपको लगता है कि इस तरह के कदम कारगर हो सकते हैं, या आपको लगता है कि ठीक है लेकिन उतना शायद असर नहीं पड़ेगा जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य से सरकार इस तरह के कदम उठा रही है?
पल्लवी देखिए, हमेशा जब भी आप इस तरह के कदम उठाते हैं तो उसमें एक हमेशा डर ये जरूर रहता है कि इस कदम से जो असुविधा होती है ये उस आदमी को होती है जो कि सही काम कर रहा है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो किसी भी सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, वो हमेशा कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं उसको मिसयूज करने का। तो ये डर हमेशा किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पॉलिसी के साथ रहेगा, लेकिन ये मतलब सरकार का कदम मुख्य रूप से इसीलिए है कि अगर इसका दुरुपयोग रोका ना जा सके तो कम से कम कुछ कम किया जा सके किसी हद तक।
कुल मिलाकर तो क्या कह सकते हैं कि इससे बहुत ज्यादा असुविधा होने की आशंका नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए?
जी, मुझे भी यही लगता है कि ज्यादातर बाई एंड लार्ज बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये खैर, कि जो पैन कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है वो काफी अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है हिंदुस्तान में, तो जिसके पास नहीं भी पैन कार्ड है उसके लिए भी बनवाना अब उतनी समस्या नहीं रह गई है, तो बाई एंड लार्ज ज्यादातर लोगों को नहीं इससे कोई असुविधा होगी।
जी, और मेरे ख्याल से आम तौर पर अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो ये संभवतः हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी पैन कार्ड नंबर हो।
जी जी बिल्कुल जी। यही नहीं, आप भारतीय नागरिक अगर मान लीजिए आप नहीं भी हैं, आप OCI हैं, तभी भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड की जो वेबसाइट है आप उस पर जा करके देखिए, तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जैसे पैन कार्ड जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपका TFN है, टैक्स फाइल नंबर, तो उसको लेने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन नागरिक या परमानेंट रेजिडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस हैं। वैसे ही हिंदुस्तान में उसका इक्विवेलेंट है पैन नंबर, तो आप टैक्स पर्पसेस के लिए हिंदुस्तानी हो सकते हैं भले ही आप नागरिक ना हो हिंदुस्तान के।
जी डॉक्टर मिश्रा, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद पल्लवी।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।